ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। संसदीय सुनवाई समिति द्वारा प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा का नाम सर्वसम्मति से अनुमोदित। संघीय संसद के दोनों सदनों में आगामी आर्थिक वर्ष के विनियोजन विधेयक का सिद्धांत और प्राथमिकताओं के ऊपर विचार विमर्श संपन्न। क्षमतामूलक समाज निर्माण के लिए नीति तथा कार्यक्रम और बजट निर्देशित होगा, अर्थमंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले का कथन। सुकुम्बासी बस्ती में विस्थापितों को प्रति परिवार 25,000 उपलब्ध कराने का मंत्रिपरिषद का निर्णय और रूस चीन राजनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन भ्रमण पर। अब समाचार विस्तार से। अर्थमंत्री डॉ स्वर्णिम वागले ने कहा कि सुशासन सरकार की उच्च प्राथमिकता में है। प्रतिनिधि सभा में आर्थिक वर्ष 2083-84 के लिए विनियोजन विधेयक के सिद्धांत और प्राथमिकताओं पर सांसदों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब देते हुए अर्थमंत्री डॉ वागले ने कहा कि सुशासन के बिना दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि संभव नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार प्रणाली सुधार के माध्यम से आर्थिक सुधार के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। अर्थमंत्री डॉ वागले ने कहा कि सरकार द्वारा आगे बढ़ाई गई अर्थव्यवस्था के पुनर्संरचना और एकीकृत पूर्वाधार जैसी प्राथमिकताएं हजारों युवाओं के लिए रोजगार सृजन करने के साथ नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने में सहयोग करेगी। बैठक में अर्थमंत्री डॉ वागले ने कहा कि सरकार ने सामाजिक न्याय को आर्थिक उन्नयन से जोड़ने की नीति अपनाई है। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक कल सुबह 11 बजे होगी। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 के लिए विनियोजन विधेयक के सिद्धांत और प्राथमिकताओं पर चर्चा समाप्त हुई है। चर्चा के दौरान उठे सवालों का जवाब देते हुए अर्थमंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा कि समतामूलक समाज के निर्माण के लिए सरकार की नीति कार्यक्रम और वार्षिक बजट निर्देशित होगा। अर्थमंत्री वागले ने कहा कि सरकार का ध्यान शासकीय सुधार और पूर्वाधार निर्माण पर केन्द्रित रहेगा। उन्होंने बताया कि आगामी आर्थिक वर्ष का बजट गरीबी तथा अवसरों से वंचित वर्गों को ऊपर उठाने के उद्देश्य से तैयार किया जाएगा। विनियोजन विधेयक के सिद्धांत और प्राथमिकताओं पर चर्चा में भाग लेने वाले सांसदों ने कहा कि आर्थिक सुधार के लिए निजी क्षेत्र का मनोबल बढ़ाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए तथा खाद्यान्न और दैनिक उपभोग की वस्तुओं की गुणवत्ता सुधारने को आगामी बजट में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। सांसदों ने बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने, अमीर और गरीब के बीच की खाई कम करने वाले रणनीतिक कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने, सीमांतकृत समुदायों के उत्थान तथा युवाओं के रोजगार योजनाओं को महत्व देने की मांग की। इससे पहले बैठक के शून्य समय में सांसदों ने समाज में बढ़ रही हत्या और लूटपाट की घटनाओं को नियंत्रित करने, आंधी तूफान से क्षतिग्रस्त विद्युत प्रसारण लाइन की शीघ्र मरम्मत करने, विस्थापित सुकुम्बासी परिवारों का जल्द पुनर्स्थापन करने तथा पर्याप्त चर्चा के बिना संविधान संशोधन की प्रक्रिया आगे न बढ़ाने की मांग की। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक जेठ 8 गते शुक्रवार दोपहर 1:15 पर बुलाई गई है। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में सांसदों ने छुआछूत और जातीय भेदभाव समाप्त करने के लिए विशेष योजना लाने की मांग करते हुए सरकार का ध्यान आकर्षित किया। प्रतिनिधि सभा की बैठक से आकस्मिक और शून्य समय में सांसदों ने कहा कि तापलेजुंग के पाथीभरा में निर्माणाधीन केवल कार परियोजना आगे बढ़ेगी या रोकी जाएगी, इस बारे में सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने देश भर में बन रही सड़कों का निर्माण कार्य समय पर पूरा करने तथा हाल ही में चोरी हुए रातो मच्छिंद्रनाथ के दायां बायां रखे जाने वाले हिटी मंग की खोज के लिए सरकार से पहल करने की मांग की है। नेपाल की विभिन्न नदियां के बढ़ते दोहन तथा चिंता जताते हुए सांसदों ने नदीजन्य पदार्थों के वैज्ञानिक प्रबंधन, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन का कड़ाई से कार्यान्वयन तथा अवैध उत्खनन में संलग्न लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। साथ ही किसानों को समय पर रासायनिक खाद्य उपलब्ध कराने की ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित निर्देशित किया गया है। सुनवाई समिति की बैठक में प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश मनोज कुमार शर्मा ने सूचना प्रौद्योगिकी की प्रयोग से न्याय तक पहुंच बढ़ाने की बात कही। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने सर्वोच्च अदालत के नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश मनोज कुमार शर्मा को आज पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में आयोजित एक समारोह के दौरान राष्ट्रपति पौड़ेल ने प्रधान न्यायाधीश शर्मा को शपथ दिलाई। प्रधान न्यायाधीश शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह, सभामुख डोल प्रसाद अर्याल, राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दहाल सहित उच्च सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति रही। संसदीय सुनवाई समिति ने प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश मनोज कुमार शर्मा के नाम को सर्वसम्मति से अनुमोदित कर दिया है। आज सिंह दरबार में हुई समिति की बैठक ने प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश शर्मा के नाम को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। समिति के सभापति बोध नारायण श्रेष्ठ ने इसकी जानकारी दी है। सरकार ने सुकुम्बासी बस्तियों से विस्थापित हुए परिवारों के पुनर्स्थापन के लिए प्रति परिवार 25,000 रूपये देने का निर्णय किया है। आज सिंह दरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में हुई मंत्रिपरिषद बैठक ने काठमांडू उपत्यका के नदी किनारे स्थित जोखिम युक्त बस्तियों को हटाते समय विस्थापित होने वाले व्यक्तियों का विवरण सत्यापन कर प्रति परिवार पुनर्स्थापन खर्च के रूप में एकमुष्ट 25,000 रूपया उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। ये जानकारी सरकार के प्रवक्ता सस्मित पोखरेल ने दी। प्रवक्ता पोखरेल ने बताया कि जोखिम युक्त बस्तियों से हटाए गए लोगों को वैकल्पिक आवास की व्यवस्था स्वयं करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 5 सदस्यीय परिवार को प्रति माह 15,000 रूपये राहत राशि भी दी जाएगी। मंत्रिपरिषद बैठक ने प्रत्यायन नियमावली 2083 को स्वीकृति देने, सैनिक सेवा छठा संशोधन नियमावली 2083 को स्वीकृत करने, नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली 2083 के अनुसार राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी के सचिवों के दरबंदी मिलान और पदस्थापन सहित अन्य निर्णय भी किए गए हैं। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। निर्वाचन आयोग ने फागुन 21 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन का खर्च विवरण सार्वजनिक किया है। आज आयोग ने विज्ञप्ति जारी करके निर्वाचन में सरकार से 6,71,92,00,000 रूपये प्राप्त हुई थी, जिसमें 4,96,78,00,000 रूपये खर्च होने की जानकारी दी है। नेपाल प्रहरी ने नागरिक केन्द्रित पुलिस सेवा और प्रविधि मैत्री रूपांतरण के मुख्य प्राथमिकता में रखते हुए आगामी 3 वर्षों के लिए रणनीतिक योजना सार्वजनिक की है। आज प्रहरी प्रधान कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में पुलिस संगठन को अधिक सक्षम, उत्तरदायी और भरोसेमंद संस्था के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य के साथ यह रणनीतिक योजना सार्वजनिक की गई है। युवा श्रम तथा रोजगार मंत्रालय ने मंत्रालय तथा उसके अधीनस्थ निकायों के कर्मचारियों के लिए नई आचार संहिता लागू की है। मंत्रालय के पुनर्संरचना के बाद जारी की गई इस आचार संहिता का उद्देश्य कर्मचारियों के आचरण, सेवा प्रवाह और प्रशासनिक अनुशासन को व्यवस्थित करना बताया गया है। मंत्रालय के अनुसार सार्वजनिक सेवा को निष्पक्ष, पारदर्शी, जवाबदेह तथा सेवामुखी बनाने के लिए कर्मचारियों के व्यवहार और कार्यशैली को स्पष्ट मानकों के दायरे में लाने के उद्देश्य से यह आचार संहिता लागू की गई है। कृषि, वन तथा पर्यावरण मंत्रालय ने मानव वन्य जीव संघर्ष प्रबंधन के लिए एक प्राविधिक समिति का कार्यदल गठन किया है। यह कार्यदल वन्य जीवों से होने वाले नुकसान को नियंत्रित करने, नीति तथा कार्यक्रम में सुधार करने और स्थानीय स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए गठित किया गया है। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज चीन का दौरा करेंगे। यह दौरा उनके अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड ट्रंप के बीजिंग दौरे के कुछ ही समय के बाद हो रहा है, जहां उन्होंने चीनी नेता सी चिनफिंग से बातचीत की थी। चीनी विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि इस दौरान सी चिनफिंग और व्लादिमीर पुतिन द्विपक्षीय संबंधों, विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग, साथ ही आपसी हित के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। पुतिन 19 और 20 मई को चीन की दो दिवसीय यात्रा पर रहेंगे, जहां उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति सी चिनफिंग से होगी। यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब दुनिया की निगाहें महाशक्तियों के बदलते समीकरणों पर टिकी हुई है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने बताया कि यह पुतिन की चीन की 25वीं यात्रा होगी। पुतिन का यह दौरा वर्ष 2001 की चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हो रहा है। दोनों शीर्ष नेता न केवल द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई देने पर बात करेंगे, बल्कि आर्थिक सहयोग और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय सुनवाई समिति द्वारा प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश डॉ मनोज कुमार शर्मा का नाम सर्वसम्मति से अनुमोदित। संघीय संसद के दोनों सदनों में आगामी आर्थिक वर्ष के विनियोजन विधेयक का सिद्धांत और प्राथमिकताओं के ऊपर विचार विमर्श संपन्न। क्षमतामूलक समाज निर्माण के लिए नीति तथा कार्यक्रम और बजट निर्देशित होगा, अर्थमंत्री डॉ स्वर्णिम वागले का कथन। सुकुम्बासी बस्ती से विस्थापितों को प्रति परिवार 25,000 उपलब्ध कराने का मंत्रिपरिषद का निर्णय और रूस चीन रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन भ्रमण पर। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।